अभिमन्यु इप्सिता को बुलाने उनके कमरे में गया। उसने कमरे में आते ही धीमी आवाज में पूछा, इप्सिता क्या तुम तैयार हो गई? इप्सिता जो झुककर अपनी हील्स बंद करने की कोशिश कर रही थी ने अपनी नज़र ऊपर उठाई और झुकने के कारण चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए कहा, हाँ हम बस हील्स पहन लें, हम लगभग तैयार हो गए हैं। इप्सिता की नज़र जैसे ही अभिमन्यु पर पड़ी वो उसे देखती ही रह गई, क्योंकि अभिमन्यु ने उसके गाउन से मिलता जुलता मैरून वेलवेट 3-पीस सूट पहन रखा था और उस पर एक चमकता हुआ हीरा का ब्रोच भी लगा हुआ था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभिमन्यु ने अपनी दाढ़ी अच्छी तरह से सेट कर रखी थी, उसके बाल भी पूरे सेटिंग स्प्रे के साथ परफेक्टली सेट थे। अभिमन्यु ने बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था। जैसे ही वो कमरे में आया पूरा कमरा उसके परफ्यूम से महक उठा। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखती ही रह गई। अभिमन्यु की नज़र जैसे ही इप्सिता पर पड़ी वो वहीं अपनी जगह पर रुक गया। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे, उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थीं। अभिमन्यु ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इप्सिता भी ये मैरून रंग का गाउन पहनेगी। उन दोनों के कपड़े बिल्कुल मैच कर रहे थे, किसी परफेक्ट कपल के आउटफिट की तरह। अभिमन्यु ने इप्सिता को देखकर अपने मन में कहा, इप्सिता तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, क्या हम इनसे मैच कर पाएंगे जरा सा भी? अपने आप से ये सवाल करते हुए भी वो इप्सिता को देखता ही जा रहा था। इप्सिता ने जैसे ही ये नोटिस किया उसने खुद ही अपनी नज़रें अभिमन्यु से हटाईं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। अभिमन्यु को देखकर ब्लश करते हुए उसके दोनों गाल काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए थे, जितना कि मेकअप वाला ब्लश लगाने से भी नहीं होते। उसने अपनी हील्स की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बस हम तैयार हो गए हैं, ये हील्स पहन लें। इप्सिता जैसे ही झुकी उसके बाल फिर से उसके मुंह पर आने लगे, जिससे उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। काफ़ी इरिटेट होकर इप्सिता ने अपने बालों को चेहरे से हटाया, लेकिन वे फिर से चेहरे पर आ गए। अभिमन्यु वहीं चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। जब अभिमन्यु ने देखा कि इप्सिता ने बड़ी मुश्किल से अपने एक पैर की हील बंद की, वो दूसरे पैर की हील उठाकर उसे पहन ही रही थी। अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने इप्सिता के हाथ से उसकी हील ले ली। उसके ऐसा करने पर इप्सिता अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछा, मे आई? इप्सिता पहले तो अभिमन्यु को मना करने वाली थी, लेकिन फिर उसने जब महसूस किया कि उसे इतने भारी गाउन और खुले बालों के साथ झुककर हील्स पहनने में दिक्कत हो रही थी तो उसने अभिमन्यु को मना नहीं किया। अभिमन्यु नीचे झुककर इप्सिता के पैरों में बड़े प्यार से वो हील डाली और उसे बंद करने लगा। इस समय वहां का माहौल काफी अच्छा हो गया था। वे दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई राजकुमार अपनी राजकुमारी को हील्स पहना रहा हो। जैसे ही हील बंद हुई अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इप्सिता। इप्सिता अभिमन्यु के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर और भी ज्यादा ब्लश करने लगी। अब उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे, इसलिए वो मुस्कुलाते हुए इधर उधर देखने लगी और कुछ भी नहीं बोल पाई उसकी तारीफ के जवाब में। अभिमन्यु भी ये बात समझ गया, इसलिए उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम तैयार हो तो चलें। इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता भी अभिमन्यु की तारीफ करना चाह रही थी, लेकिन उसने अभिमन्यु से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि अगर वो तारीफ करेगी तो पता नहीं अभिमन्यु क्या सोचेगा। वैसे वो बहुत हैंडसम लग रहा था कि इप्सिता की नज़रें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हट रही थीं, और ये बात कहीं ना कहीं अभिमन्यु को भी समझ आ रही थी, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की। इप्सिता ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अभिमन्यु के साथ कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही अभिमन्यु सीढ़ियों पर पहुंचा उसने इप्सिता की तरफ देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर उसने अपना हाथ इप्सिता की तरफ बढ़ाया। इप्सिता ने एक हाथ से अपने गाउन को थोड़ा सा पकड़ा और उसने दूसरा हाथ अभिमन्यु के हाथ में दे दिया। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतारा, क्योंकि उसे याद था कि इप्सिता हील्स में इतनी ज्यादा सहज नहीं रहती। जैसे ही वे दोनों हॉल में आकर खड़े हुए अभिमन्यु ने दरवाजे पर खड़े ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार निकालो। कुछ ही सेकंड में उसकी वो पॉश कार सीधे विला के बाहर आकर खड़ी हो गई। शांता काकी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, बहुरानी सा आप बड़ी ही प्यारी लग रही हैं, और कुंवर सा आपका तो क्या ही कहने, आप दोनों को भगवान हर बुरी नज़र से बचाएं। इतना बोलकर शांता काकी ने उन दोनों की एक साथ दुआएं मांगी। इप्सिता उन्हें ऐसा करते देखकर मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वे लोग विला से बाहर निकले। अभिमन्यु ने इप्सिता को कार में बैठने में मदद की और खुद भी इप्सिता के बगल में आकर बैठ गया। उन लोगों को जिस पार्टी में जाना था उसका स्थान विला से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए 10 मिनट में ही वे लोग मुंबई शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल के एक बड़े से पार्टी लॉन में पहुंच गए। जैसे ही पार्टी लॉन के बाहर कार रुकी, बाहर खड़े गेटकीपर ने जल्दी से आकर कार का दरवाजा खोला। अभिमन्यु कार से बाहर उतरा। इप्सिता कार से बाहर उतर ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, थैंक यू। वे लोग सामने बनी कुछ सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए। उस पार्टी लॉन का गेट खुला हुआ था। वो पार्टी लॉन काफी अच्छी तरह से सजा हुआ था और उसमें काफी सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों जैसे ही पार्टी हॉल के अंदर आए, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही टिक गईं। वहां मौजूद हर व्यक्ति एक नजर अभिमन्यु और इप्सिता को ही देख रहा था, क्योंकि वे दोनों एक साथ एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। वहीं इप्सिता तो बेहद खूबसूरत लग रही थी, कुछ लोग तो इप्सिता की तरफ से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। इप्सिता ने जैसे ही ये महसूस किया कि सबकी नजरें उस पर ही हैं, तो उसे थोड़ा असहज हुआ। उसने अभिमन्यु का हाथ और कसकर पकड़ लिया। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ को कसकर पकड़ा, अभिमन्यु समझ गया कि शायद इप्सिता थोड़ी असहज हो रही है। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, रिलैक्स इप्सिता, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे सहकर्मी हैं, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी तो उसने अपने मन में कहा, हमें ऐसे ही हर किसी से मिलना तो पसंद नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पार्टी में आ गए हैं तो मिलना पड़ेगा, हम सीधे मना तो नहीं कर सकते। अभिमन्यु को बुरा लगेगा, और यहाँ तो हर किसी ने गोल्डन और मैरून रंग के ही कपड़े पहने हुए हैं, शायद ये पार्टी का थीम होगा, लेकिन फिर भी हमारे जैसा गाउन किसी का भी नहीं है और अभिमन्यु के जैसा ड्रेस भी नहीं, पर रंग वही है, शायद ये एक रंग थीम पार्टी होगी जिसमें ये दो रंग ऑप्शन है। वहां पार्टी में पहले से ही आए हुए सारे लोगों की तरफ देखते हुए इप्सिता मन ही मन सारी बातें सोच रही थी, क्योंकि वो अभी फिलहाल अभिमन्यु से ये सब नहीं कह सकती थी कि उसे किसी से नहीं मिलना है। इप्सिता अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल रही थी। अभिमन्यु जैसे ही वहां पहुंचा, सभी लोग अभिमन्यु से बात करने के लिए उसके पास आने लगे। तभी अभिमन्यु ने अपने सामने खड़े एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिस्टर बजाज। सामने खड़े उस आदमी ने अभिमन्यु से हाथ मिलाते हुए कहा, कुंवर सा, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, हम तो सोच रहे थे कि शायद आप अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हैं तो शायद पार्टी में आने का समय भी नहीं मिल पाएगा आपको। इस पर अभिमन्यु ने गंभीर लहजे में कहा, ऐसे कैसे सोच लिया आपने, हमारे प्रोजेक्ट की पार्टी होगी और हम ही नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है।
अभिमन्यु की ये बात सुनकर वहां मौजूद बाकी के जितने भी लोग थे वे इप्सिता की तरफ देख रहे थे। वहीं इप्सिता बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, वो वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती थी, उसके लिए वे सब बिल्कुल अजनबी थे। इप्सिता को ऐसे चुप खड़ा देखकर वहां मौजूद लोगों ने अभिमन्यु के सामने आकर कहा, पर कुंवर सा, वैसे आपके साथ ये खूबसूरत महिला कौन है। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर उन्हें परिचय करवाते हुए बोला, लेट मी इंट्रोड्यूस जेंटलमैन, शी इज माई फियांसे एंड सून टू बी वाइफ इप्सिता सूर्यवंशी। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, वहां मौजूद जितने भी लोग थे वे सब बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने आपस में धीरे धीरे बात करते हुए कहा, अच्छा तो यही है कुंवर सा की होने वाली पत्नी, वैसे मानना पड़ेगा है तो ये बड़ी ही खूबसूरत, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी प्यारी होंगी। अब जब कुंवर सा इतने हैंडसम है तो उनकी होने वाली पत्नी तो होगी ही इतनी खूबसूरत। हाँ, और इनका तो नाम भी बहुत प्यारा है, इप्सिता सूर्यवंशी। वे मौजूद सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे जो कि इप्सिता और अभिमन्यु के कानों में भी पड़ रही थी। उन सारे आदमियों के बीच में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब ये सूर्यवंशी परिवार की बेटी है, बहुत नाम सुना है उनका भी। दूसरे आदमी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ वे भी राज परिवार हैं, लेकिन राजवंशी परिवार जैसा अब उनका ठाटपाट नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हैसियत में बराबर ही हैं। पहला आदमी मायूसी से बोला, हाँ बराबरी वालों में ही रिश्ते होते हैं, नहीं तो हम लोगों की कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि हमारी बेटियों को राज परिवार के कुंवर का रिश्ता आए। दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन जो भी कहो जोड़ी बहुत अच्छी है दोनों की, बस किसी की बुरी नज़र न लगे। अभिमन्यु उन सब की बात सुनकर इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता अभी भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, वो किसी से भी कुछ नहीं बोल रही थी। तो अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, वैसे हमें ऐसा लग रहा है शायद तुम बोर हो रही हो। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, सच कहूँ तो हाँ थोड़ा सा, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं इतनी भी बोर नहीं होंगी। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। उसने धीमी आवाज में कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें पार्टी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर तसल्ली से मुस्कुरा दी और उसने फिर से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। तभी अभिमन्यु वहां पर अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात ही कर रहा था, तभी वेटर हाथ में वाइन और बियर के ग्लास लेकर आया और वो इप्सिता के सामने आकर खड़ा हो गया। इप्सिता जब से वहां पहुंची थी उसने कुछ भी नहीं खाया था तो उसका गला थोड़ा सूख रहा था, इसलिए इप्सिता ने उन गिलासों की तरफ देखा और वो अपना हाथ बढ़ाकर एक गिलास उठाने जा ही रही थी। अभिमन्यु की नज़र इप्सिता की तरफ गई और उसने वेटर की तरफ देखते हुए पूछा, रुको एक मिनट, क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक है। वेटर ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर ये बियर और वाइन है। जैसे ही वेटर ने ये बात कही, इप्सिता ने अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया, क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करती थी और ऐसे अभिमन्यु के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु उसे इस तरह हाथ पीछे करते देखकर अपने मन में बोला, हम भी कितने बेवकूफ हैं, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए हुए और हमने इप्सिता से एक बार भी कुछ नहीं पूछा, उसे इतनी देर से प्यास लगी होगी। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, जाओ सॉफ्ट ड्रिंक या फिर फ्रूट जूस लेकर आओ। अभिमन्यु का आदेश सुनते ही वो वेटर तुरंत वहां से मुड़ गया और चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो ऑरेंज जूस लेकर आया। क्रमशः